पंचाष्टिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, इन्द्रसदवन्द्याणं, तिरुवणहितमधुरविसवकाणं, हन्तादीतगुणाणं, नमो जिनाणं द्विजभवाणं। ये पंचाष्टिकाय संग्रह को हम देखते हुए अभी आठवीं गाथा को देख रहे हैं और पेज नंबर 45 पर आए हैं। देखो यहाँ क्या बात चल रही है कि जो द्रव्य है वो अनेक धर्मात्मक होता है। एक ही धर्म से पूरा धर्म पूरा द्रव्य है ऐसा कहना यह मिथ्या मान्यता है, एकांत जिसको हम कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अपना जैन दर्शन है वो अनेकांतवादी है। तो इसलिए यहाँ सत्ता की बात चल रही है। अस्तित्व इतले सत्ता नामनो सत्नो भाव अर्थात सत्व, विद्यमान मात्र वस्तु नथी सर्वथा नित्यपने होती के नथी सर्वथा क्षणिकपणे होती। ये तो अभी हम समझ जावे ऐसी बात है कि सर्वथा कभी होती नहीं, कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है। सर्वथा नित्य वस्तु ने खरेखर क्रमभावी भावोनो अभाव थवाती विकार एटले फेरफार परिणाम क्यांथी थाय, अने सर्वथा क्षणिक वस्तु ने लीधे खरेखर प्रत्यभिज्ञ वस्तु ने विषय खरेखर प्रत्यभिज्ञान नो अभाव थवाथी एक प्रवाह पनो क्यांथी थ रहे। माटे प्रत्यभिज्ञान ना हेतुभूत कोई स्वरूप थी भूल रहती अने कोई बे क्रमवर्ती स्वरूपों थी नष्ट थती के उपजती, ए रीते एकज काले परमार्थे त्रेवड़ी त्रण अंशवाड़ी अवस्था ने धरती वस्तु सच जानवी। ये त्रण अवस्था ने उत्पाद वे ध्रुवत्व।
देखो यहाँ क्या कहते हैं कि कोई स्वरूप की ध्रुव रहती और कोई बेक्रमवर्ती स्वरूप होती। बेक्रमवर्ती ने इमीडिएट दो पर्याय ली, क्योंकि एक ही समय में पूर्व पर्याय का व्यय और उसके नेक्स्ट क्रम से आने वाली अनंतर पर्याय का उत्पाद, या इसीलिए कहा बे क्रमवर्ती स्वरूपोती नष्ट थती ने उपजती। यानी दो क्रमवर्ती पर्याय लिए, एक से नष्ट हो रहा है एक से एक ही समय में। ये रीते एक काले त्रेवड़ी यानी तीन अंश वाली, एक ही समय में तीनों ही अंश है।
और ऐसी जो उत्पाद हुए ध्रुव स्वरूप जो वस्तु है वही सत्य है ऐसा कह रहे हैं। क्या अवस्था ने धरती वस्तु सत्य जाणवी तेथी ज सत्ता पण उत्पाद वे द्रव्यात्मक त्रिलक्षणा जाणवी, कारण के भाव अने भाववान नु कथनचित एक स्वरूप होय छे। भाव यानी वहां गुण और भाववान यानी द्रव्य।
जैसे द्रव्य उत्पाद वे द्रव्यात्मक है तो उसकी सत्ता भी उत्पाद वे द्रव्यात्मक,
वड़ी ते सत्ता एक छे, कारण के ते त्रिलक्षण वाला समस्त वस्तु विस्तार नु सादृश्य सूचवे छे। वड़ी ते सत्ता सर्व पदार्थ स्थित छे, कारण के तेना कारणे ज सत्ता ने लीधे ज सर्व पदार्थों मा त्रिलक्षणनी સત એવા કથની અને સત એવા પ્રતીતિની ઉપલબ્ધિ થાય છે. વળી તે સત્તા સવિશ્વરૂપ છે. કારણ કે તે વિશ્વના રૂપો સહિત અર્થાત સમસ્ત વસ્તુ વિસ્તારના ત્રિલક્ષણવાળા સ્વભાવો સહિત વર્તે છે. વળી તે સત્તા અનંત પર્યાયમય છે. કારણ કે તે ત્રિલક્ષણવાળી અનંત દ્રવ્ય પર્યાય રૂપ વ્યક્તિઓથી વ્યાપ્ત છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય વિશેષાત્મક સત્તાનું તેના સામાન્ય પડખાની અપેક્ષાએ અર્થાત મહાસત્તા રૂપ પડખાની અપેક્ષાએ વર્ણન થયું. આવી હોવા છતાં તે પરમેશ તે ખરેખર નિરંકુશ નથી, પરંતુ સપ્રતિપક્ષ છે. સત્તાને અસત્તા પ્રતિપક્ષ છે, ત્રિલક્ષણાને અત્રિલક્ષણાનું પ્રતિપક્ષ છે, એકને અનેકપણું પ્રતિપક્ષ છે, સર્વ પદાર્થ સ્થિતને એક પદાર્થ સ્થિતપણું પ્રતિપક્ષ છે, સવિશ્વરૂપને એક રૂપપણું પ્રતિપક્ષ છે, અનંત પર્યાયમયને એક પર્યાયપણું પ્રતિપક્ષ છે. અભી કૈસા વો બતાવે. ઉપર્યુક્ત સપ્રતિપક્ષપણું સ્પષ્ટ સમજાવવામાં આવે છે. સત્તા દ્વિવિધ છે, એક મહાસત્તા અને અવાંતર સત્તા. તેમાં સર્વ પદાર્થ સમૂહમાં વ્યાપનારી સાદૃશ્ય અસ્તિત્વને સૂચવનારી મહાસત્તા સામાન્ય સત્તા તો કહેવાય જ ગઈ. બીજી પ્રતિનિશ્ચિત એટલે એક એક નિશ્ચિત વસ્તુમાં રહેનારી સ્વરૂપ અસ્તિત્વને સૂચવનારી અવાંતર સત્તા વિશેષ સત્તા છે. યાને હમ જબ કહેતે કે દ્રવ્ય, તો દ્રવ્ય કહેને સે દ્રવ્ય મહાસત્તા હો ગઈ, લેકિન ઉસમેં જીવ દ્રવ્ય, પુદ્ગલ દ્રવ્ય એસે અને એક એક દ્રવ્ય કા નામ લેંગે તો વો અવાંતર સત્તા હોતી હે. ઇસલિએ યહાં કહે રહે હૈ કે પહેલે મહાસત્તા કી તો બાત હુઈ થી, અભી પ્રતિનિશ્ચિત યાને એક એક નિશ્ચિત વસ્તુમાં રહેનારી સ્વરૂપ અસ્તિત્વને સૂચવનારી અવાંતર સત્તા.
સાદૃશ્ય અસ્તિત્વ કહાતા મહાસત્તા કો, ઓર ઇસકો સ્વરૂપ અસ્તિત્વ કહે રહે.
મહાસત્તા કો સાદૃશ્ય અસ્તિત્વ.
અસ્તિત્વ સભી મે અભી પઢા ના ઉપર કી લાઈન મે લિખા હૈ, દેખો સેકન્ડ લાઈન મે સર્વ પદાર્થ સમૂહ માં વ્યાપનારી સાદૃશ્ય અસ્તિત્વ ને સૂચવનારી મહાસત્તા છે. સબ વસ્તુ સત્તા સ્વરૂપ હૈ, અસ્તિત્વ પ્રત્યેક મે હૈ, વહી મહાસત્તા હો. હા હા સ્વરૂપ અસ્તિત્વ યહાં સેકન્ડ લાઈન મેં સાદૃશ્ય અસ્તિત્વ ને સૂચવનારી મહાસત્તા છે અસલી રે, ઓર ચૌથી લાઈન મેં લિખા સ્વરૂપ અસ્તિત્વ ને સૂચવનારી અવાંતર સત્તા. એક સામાન્ય સત્તા ઓર એક વિશેષ સત્તા.
દેખો પ્રત્યેક દ્રવ્ય સત સ્વરૂપ હૈ, યાને વો તો વૈસે દેખા જાય તો વો સ્વરૂપ કા અસ્તિત્વ, યાને જીવ દ્રવ્ય કા સ્વરૂપ અલગ હૈ, પુદ્ગલ દ્રવ્ય કા સ્વરૂપ અલગ હૈ, લેકિન ઉનકી સત્તા હૈ. લેકિન યે જબ સબ સબ કી સત્તા હૈ, એસે સબ કી સત્તા મિલકર એક મહાસત્તા હૈ, વો સાદૃશ્ય પણ હૈ પ્રત્યેક મેં સત 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 સત
એસા અસ્તિત્વ હૈ, સબ મેં સમાનતા હૈ. જૈસે હમ સબ મનુષ્ય હૈ, પરંતુ હરેક તો અપના અપના ઉસકા જુદા જુદા અસ્તિત્વ હૈ, ઉસકા ઉસકા મનુષ્યપના જુદા જુદા હૈ.
હા વિશેષ સત્તા છે. યા તક આય એક નંબર આવી ત્યાં મહાસત્તા અવાંતર સત્તા રૂપે અસત્તા છે. યાને જબ હમ અવાંતર સત્તા કી બાત કર રહે તો મહાસત્તા વહાં અસત્તા રૂપ છે, વહાં ઉસકો उसकी बात नहीं हो रही है। क्या कहा देखो, त्या महासत्ता अवांतर सत्ता रूपे असत्ता छे, अने अवांतर सत्ता महासत्ता रूपे असत्ता छे, दोनों एक दूसरे के सामने असत्ता है। तेथी सत्ता ने असत्ता छे अर्थात जे सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होवाती सत्ता छे, तेज अवांतर सत्ता रूप पण होवाती असत्ता पण छे। यानी महासत्ता को ही सत्ता और असत्ता दोनों ने एस्टेब्लिश किया, और अवांतर सत्ता को ही सत्ता और असत्ता ऐसा बताया।
जैसे हम कहते हैं ना स्व और पर की अपेक्षा कहते हैं, या सामान्य, सामान्य वो विशेष नहीं है, ऐसे यहाँ महासत्ता है वो विशेष सत्ता नहीं है, उसकी अपेक्षा वो असत्ता है। हम कहते हैं कि जो ए और बी द्रव्य है, दो द्रव्यों में जैसे घटित करते हैं, तो ए है वो बी नहीं है, तो बी की अपेक्षा उसकी असत्ता है। जैसे सत और असत दो धर्म बताते थे, वैसे यहाँ पर ले लेते। ये अपनी बातें हुई ना अभी, कलशामृत में भी हुई है, अभी अभी भी हुई है, ये लघु तत्व स्फोट में भी हो गई बहुत। यानी ये प्रतिपक्ष कैसे है उसके छह पॉइंट बताए, वो सबको रिपीट करे। यानी हर एक उसके जो विशेषण बताए सत्ता के, उसमें छह पॉइंट्स बताए थे, वो हर एक का प्रतिपक्ष है, वो सर्वथा निरंकुश नहीं है, ऐसे बता ले। अब उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है।
देखो यहाँ ऊपर दूसरा पैराग्राफ में पहला पॉइंट दिया ना, सत्ता ने असत्ता प्रतिपक्ष छे, यानी प्रत्येक को प्रतिपक्ष बताया है। त्रिलक्षणा ने अत्रिलक्षण नु प्रतिपक्ष छे, ऐसे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं। ये निचले पैराग्राफ में जहाँ एक पॉइंट है वहाँ बताते, त्या महासत्ता अवांतर सत्ता रूपे असत्ता छे, यानी महासत्ता ये अवांतर सत्ता नहीं है इसलिए वो असत्ता रूपे छे। अने अवांतर सत्ता महासत्ता रूपे असत्ता छे, तेथी सत्ता ने असत्ता छे अर्थात जे सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होवाती सत्ता छे, तेज एटले तेज महासत्ता अवांतर सत्ता रूप पण, अवांतर सत्ता रूप पण होवाती असत्ता पण छे। एक एक पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट कौन सा है, त्रिलक्षणा ने जे स्वरूपे उत्पाद छे, तेनु ते स्वरूप नु ते रीते उत्पाद एकज लक्षण छे, जे स्वरूपे व्यय छे, तेनु ते स्वरूप नु ते रीते व्यय एकज लक्षण छे, अने जे स्वरूपे द्रव्य छे, तेनु ते स्वरूप नु ते रीते द्रव्य एकज लक्षण छे। તેથી વસ્તુના ઉપજતા નષ્ટ થતા અને ધ્રુવ રહેતા સ્વરૂપોમાં પ્રત્યેકને ત્રિલક્ષણનો અભાવ હોવાથી ત્રિલક્ષણ સત્તાને અત્રિલક્ષણ છે। અર્થાત જે મહા, જે સામાન્ય વિશેષાત્મક સત્તા મહાસત્તારૂપ હોવાથી ત્રિલક્ષણ છે, તે જ અહીં કહેલી અવાંતર સત્તારૂપ પણ હોવાથી અત્રિલક્ષણ પણ છે। अभी ऊपर का तो समझ में आ रहा है, ब्रैकेट में लिखा वो ख्याल में नहीं आया मेरे।
देखो यहाँ क्या कहते हैं, जो उत्पाद है वो व्यय रूप नहीं है, उत्पाद है वो उत्पाद रूप ही है, व्यय है वो व्यय रूप है, और ध्रुवता जिस अपेक्षा से वो ध्रुव रूप ही है। यानी जो उत्पाद रूप है उसी रूप से उसका व्यय नहीं है, जिस रूप से उत्पाद है उसी रूप से व्यय नहीं है। परंतु महासत्ता ने पूर्ण एक सामान्य विशेषात्मक सत्ता ली, वहां तो तीनों ही लक्षण घटित होते हैं, पूर्व पर्याय का होते हैं ना, सत्ता में भी होते हैं, और वो उसमें तो त्रिलक्षण घटित कर दिए, परंतु अभी एक एक का जुदा जुदा वर्णन कर रहे। अकेले उत्पाद की तरफ देखो तो उसका उत्पाद जिस अपेक्षा से उत्पाद है उस अपेक्षा से उत्पाद ही है, जिसे मुझे ना सम्यक्त्व का उत्पाद है, और वे सम्यक्त्व रूप से नहीं है, वे तो मिथ्यात्व से वे है, और कायम जो है वहां पर कायम इसे हाँ वहां गुण को कहा, कहीं कहीं तीनों ही पर्यायात्मक भी लेते हैं, जैसी जहां विवक्षा हो। यहाँ लिखा ना जे स्वरूपे उत्पाद छे तेनु ते स्वरूप नु ते रीते उत्पाद एकज लक्षण छे,
यानी उत्पाद का लक्षण उत्पाद ही है,
यानी जिस रूप से उत्पाद है वो उत्पाद रूप से ही है, जिस रूप से वे स्वरूप कहो या रूप कहो, जिस रूप से वे हो रहा है वो रूप व्यय का ही है, और जिस रूप से कायम है यानी ध्रुवता है वो ध्रुव रूप ही है। यानी तीनों को मिलकर वस्तु का रूप बताया, वस्तु का स्वरूप बताया, परंतु उसमें एक एक को अलग जुदा जुदा कहना है तो वो जुदा है।
देखो यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है ना, अर्थात जे सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होवा थी, यानी त्रिलक्षणा छे महासत्ता त्रिलक्षणा छे, तेज आई कहेली अवांतर सत्ता रूपन होवा थी अत्रिलक्षणापन छे, ये पॉइंट जरा क्लियर नहीं हुआ मुझे।
हाँ, यानी ऐसा अभी यहाँ महासत्ता किसको कहा, तो पूरा वस्तु उत्पाद वे ध्रुव मिलकर सत्ता कही, सद्रव्य लक्षण, यहाँ उसको सत्ता कहा। हाँ हाँ, यानी पूरे सामान्य विशेषात्मक वस्तु जो है उसकी सत्ता जो ली, जिसमें सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत, उस सत्ता की बात है, और उसमें उत्पाद की सत्ता जो दी है, व्यय की सत्ता जो दी है, और ध्रुवता की सत्ता जो दी है।
पर आई कह लिया अवान्तर सत्ता रूपन हुआ थी और त्रिलक्षण छे। अच्छा 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 अच्छा,
यहाँ उसी को अवान्तर
यानी महासत्ता को ही, महासत्ता को ही अत्रिलक्षण कहा।
हाँ,
स्वरूप सत्ता को
एक ही द्रव्य, स्वरूप की सत्ता माने एक ही द्रव्य की
सत्ता, उसी में महा, देखो सभी द्रव्यों को भी महासत्ता कहेंगे, या उत्पाद वे ध्रुव तीनों मिलकर भी महासत्ता कहेंगे, और एक एक को अवान्तर सत्ता कहेंगे। हाँ,
फिर से हैं, देखो मैं तो कुछ अलग समझ रहा हूँ, अर्थात पेज नंबर 46। अच्छा, जे सामान्य विशेषात्मक महासत्ता, जे सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होती त्रिलक्षण छे, ये तो समझ में आया। तेज आई कहेली अवान्तर सत्ता रूपन हुआ थी, यानी अवान्तर सत्ता में भी त्रिलक्षण है, पर ये हुआ थी महासत्ता अत्रिलक्षण छे।
नहीं नहीं, देखो देखो ऐसा नहीं है,
देखो देखो ऊपर देखो क्या लिखते हैं, त्रिलक्षण ने अत्रिलक्षण पर प्रतिपक्ष छे,
तेज महासत्ता ने तेज सत्ता अवान्तर सत्ता रूप पण होवाथी अत्रिलक्षण पण छे, सत्ता को कहे महासत्ता अवान्तर सत्ता रूपे नथी, सत्ता अवान्तर सत्ता रूपे छे।
अत्रिलक्षण कोनो लक्षण छे?
अवान्तर सत्ता नो,
हूँ कहू छु महासत्ता नो।
ना 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 ना, देखो देखो फिर से पढ़ो, जे सामान्य विशेषात्मक सत्ता यानी जे सत्ता महासत्ता रूप होवाती त्रिलक्षणा छे, तेज सत्ता अहीं कहली अवान्तर सत्ता रूप पण होवाती, महासत्ता अवान्तर सत्ता रूपे नथी, सत्ता अवान्तर सत्ता रूपे छे। सत्ता के दो भेद, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। देखो यहाँ महासत्ता दो अपेक्षा से कहे में आते, सभी द्रव्यों को मिलकर महासत्ता कहेंगे तब एक एक द्रव्य की सत्ता को अवान्तर सत्ता कहेंगे, पूरे एक द्रव्य को महासत्ता कहेंगे, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों आ गए तो एक एक को अवान्तर सत्ता कहेंगे, उत्पाद की सत्ता जुदी, व्यय की सत्ता जुदी और ध्रुव की सत्ता जुदी।
लेकिन ये बात जो अभी माने आपने जो कही वो बात यहाँ कहाँ लिखी,
यही तो अभी तो पढ़ा ना, अभी
यहाँ वो तो आपने डिडक्शन अपने बुद्धि से निकाला, वो जो सही है
ये इसी से निकलता है ना, जो त्रिलक्षण और एक लक्षण जब कहेंगे तो त्रिलक्षण कौन है, द्रव्य ही है ना पूरा एक।
ये बात माने ये बात सही है, लेकिन वो बात जिसको अभी पहले जिसको अवान्तर सत्ता कहा था अभी उसको हम महासत्ता कह रहे हैं, वो बात एकदम फोड़ फाड़ के नहीं लिखी।
हाँ, क्लियर ऐसा क्लियर नहीं है, जैसे हम वो तो संग्रह में और व्यवहार नहीं करते जाओ ना, वैसे महासत्ता अवान्तर सत्ता के भी भेद हो गए।
देखो मुझे जो लग रहा है मैं बताता हूँ, आप जरा देखना उज्ज्वला, आगे स्वामी जी बताएंगे जब तो हम देखेंगे ही। देखो ये सेकंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं, આવી હોવા છતાં તે ખરેખર નિરંકુશ નથી પણ સપ્રતિપક્ષ છે. તો જે સપ્રતિપક્ષ છે તે શું છે? સત્તાની વાત ચાલે છે ને, તો સત્તાને અસત્તા પ્રતિપક્ષ છે. તો સત્તા અને અસત્તા એક જ દ્રવ્યમાં સત્તા અને અસત્તા લાગે છે. એ નીચે સત્તા દ્વિવિધ છે. નીચેના લાઇનમાં મહાસત્તા અને અવાંતર સત્તા, તેમાં સર્વ પદાર્થ સમૂહમાં વ્યાપનાર સાદૃશ્ય અસ્તિત્વને સૂચવનારી મહાસત્તા સામાન્ય સત્તા તો કહેવાય જ ગઈ. બીજી પ્રતિનિશ્ચિત એક એક નિશ્ચિત વસ્તુમાં રહેનારી સ્વરૂપ અસ્તિત્વને સૂચવનારી અવાંતર સત્તા વિશેષ સત્તા છે. અભી બતા રહે ત્યાં મહાસત્તા અવાંતર સત્તા રૂપે અસત્તા છે. મહાસત્તા કોઈ અવાંતર સત્તા રૂપ છે, અસત્તા કહા. અને અવાંતર સત્તા મહાસત્તા રૂપે અસત્તા છે.
એને મહાસત્તા તે અવાંતર સત્તા નહીં હે ઓર અવાંતર સત્તા વો મહાસત્તા રૂપ નહીં હે, યે ઉસકા અર્થ
હુઆ. કે કે
મહાસત્તા હે વો અવાંતર સત્તા નહીં હે,
વો અસત્તા હે.
અસત્તા
ઓર અવાંતર સત્તા ભી જો સત્તા હે વો મહાસત્તા રૂપ નહીં, એટલે વો ભી અસત્તા હે. હા, યે જૈસા એક કોઈ દોનો લગાયા વૈસે યહાં નીચે મેં ભી લગાના ચાહિએ એસા મુઝે લગતા હૈ.
ક્યા અભી આગે દો સેકન્ડ પોઈન્ટ.
હા, જે સ્વરૂપે ઉત્પાદ છે તેનું તે સ્વરૂપનું તે રીતે ઉત્પાદ એક જ લક્ષણ છે. તે સ્વરૂપે જે સ્વરૂપે વ્યય છે
ઉત્પાદ છે એનું ઉત્પાદ કે અસ્તિત્વ ઉત્પાદ કે સત્તા તો ઉત્પાદ રૂપી હે, વ્યય કી સત્તા વ્યય રૂપી હે.
ઓર ધ્રુવ કી સત્તા ધ્રુવ સ્વરૂપ હે, એ ઇસકા લક્ષણ ભી હે. તેથી વસ્તુના
એક એક લક્ષણ હુઆ
उसके नीचे की लाइन पढ़ता हूँ तो ये स्वरूप नु लिखा है ना उसके आगे. तेथी वस्तु न उपजता नष्ट तथा ने ध्रुव रहता स्वरूपोमान स्वरूपोमाना प्रत्येक ने त्रिलक्षण नो अभाव होवा थी त्रिलक्षण सत्ता ने अत्रिलक्षणपणु छे. ये तो समझ में आया यहाँ तक.
अभी उसके तीन स्वरूप अलग बताए, वस्तु के उपजते स्वरूप में, वस्तु के नष्ट हुए थे हुए स्वरूप में से, और वस्तु के ध्रुव रहता स्वरूप माना प्रत्येक ने, यानी प्रत्येक की सत्ता जुदी जुदी ली. पहले अवांतर सत्ता का जिसको कहा था ना द्रव्य को, उसी को अभी महासत्ता कह रहे हैं. और वो कैसे, तो उत्पाद वे द्रव्य मिलकर है, उसको त्रिलक्षण कहा. अभी अभी उत्पाद, हाँ अभी उत्पाद की अपनी सत्ता जुदी, ध्रुव की जुदी, और इसकी उसको अभी अवांतर सत्ता कह रहे. शायद देखेंगे स्वामी जी क्या कहते अभी. हाँ,
आप थोड़ा सा आगे चलना.
हाँ, मैं पढ़ती हूँ आगे. ये दो पॉइंट्स हो गए अपने.
ये वो ब्रैकेट का जरा नहीं सुझ रहा है.
देखो देखो, जे सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होवाती त्रिलक्षण छे. त्रिलक्षण या द्रव्य की सत्ता लिए अकेली एक की तेज अही कहेली, अही कहेली अवांतर सत्ता, यानी यहाँ विशिष्ट कहने वाली ये दूसरा पॉइंट में जो बताई है उसकी बात है. तो यहाँ बताई हुई अवांतर सत्ता रूप पण होवा थी अत्रिलक्षणा पण छे. तीसरी बात, यानी त्रिलक्षण और अत्रिलक्षण पण इनमें प्रतिपक्ष पण है, पण जो हाँ
त्रिलक्षण और
अत्रिलक्षण प्रतिपक्ष. अब कहते एक वस्तु नी स्वरूप सत्ता अन्य वस्तु नी स्वरूप सत्ता नथी, यानी एक और अनेक ये प्रतिपक्ष बताए थे. तेथी एक सत्ता ने અનેકપણું છે, અર્થાત જે સામાન્ય વિશેષાત્મક સત્તા મહાસત્તા રૂપ હોવાથી એક છે, તે જ અહીં કહેલી અવાંત સત્તા રૂપ પણ હોવાથી અનેક પણ છે. પણ અભી વો પહેલે તો સત્તા અસત્તા કહેના થા, અભી વો ઇસી ભી હૈ, યાને વહી મહાસત્તા એક ભી હૈ ઓર અવાંત સત્તા રૂપ સે વો અનેક ભી હૈ. મહાસત્તા કોઈ એક ઓર અનેક દો રૂપ મેં બતાયા, क्योंकि सर्वथा नहीं है ऐसा उनको सिद्ध करना था. देखो सत्ता है वो सर्वथा सत्ता नहीं, वो असत्ता भी है, इसलिए महासत्ता और अवांतर सत्ता भेद करके वो सत्ता असत्तावाद बताई। अब कहते त्रिलक्षण और अत्रिलक्षण, उत्पाद व्यय द्रव्य मिलकर वो पूरी सत्ता है, परंतु उत्पाद है उसका स्वरूप जुदा है, व्यय का स्वरूप जुदा है ध्रुवता का, इसलिए वो अत्रिलक्षण भी कह दिया। तीसरा पॉइंट बताया कि एक वस्तु की स्वरूप सत्ता वो दूसरे वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए एक सत्ता के अनेक अनेक पुण्य, यानी जो सामान्य विशेषात्मक महासत्ता रूप हुआ थी एक छे, तेज अहीं कहेली अवांतर सत्ता रूप कौन हुआ थी अनेक पण छे, एक भी है और अनेक भी है,
या तो तीन है।
नहीं, यहाँ तीन नहीं लेना, अन्य वस्तु की सत्ता लेना, दो भिन्न वस्तुएं ली है। वो त्रिलक्षण में एक वस्तु में तीन भेद की उत्पाद वेद रूपता की, और जो एक है सत्ता अपने से एक है, वो पर की अपेक्षा से वो यानी महासत्ता रूप से एक है। अभी सारे मनुष्य मिलकर हम कहेंगे एक मनुष्य एक है, एक एक जाति से हम उसको बताएंगे, परंतु उनकी संख्या की अपेक्षा बताएंगे तो वो अनेक है, क्योंकि हर एक मनुष्य जुदा जुदा है। इस तरह से महासत्ता और अवंश सत्ता में एक अनेक पन, वो एक भी और अनेक भी है। जैसे होंगे ना द्रव्य एक है, उसी द्रव्य को गुण पर्याय की अपेक्षा देखेंगे द्रव्य ही अनेक है, ऐसे महासत्ता तो एक है, उसी को अवांतर सत्ता की अपेक्षा देखते तो अनेक भी है, यानी प्रतिपक्ष सहित है सर्वथा निरंकुश नहीं है बताना था। जैसे बोले वो सत्ता भी है असत्ता भी है, यानी महासत्ता कोई अवांतर सत्ता रूप से कहने तो वो असत्ता भी है, इस तरह से। अब चौथा पॉइंट, प्रतिनिश्चित यानी व्यक्तिगत निश्चित पदार्थ में स्थित सत्ताओं वड़ेज, पदार्थों प्रतिनिश्चितपणु भिन्न भिन्न निश्चित व्यक्तित्व हो, क्या कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ की अपना अस्तित्व अपनी सत्ता जुदी जुदी है, तेथी सर्व पदार्थ स्थित सत्ता ने एक पदार्थ स्थितपणु छे, अर्थात जे सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप हुआ थी सर्व पदार्थ स्थित छे तेज अहीं कहेली अवांतर सत्ता रूप पण होवाथी एक पदार्थ स्थित पण छे कहते वो भी है और ये भी है, यानी जो महासत्ता सर्व पदार्थों में स्थित है उसी महासत्ता को अवांतर सत्ता रूप से देखने पर वो अनेक भी है, अनेक स्थित भी है। अब पांचवा पॉइंट आप पढ़ेंगे।
प्रतिनिश्चित एक एक रूप वाली सत्ता हो वड़े वड़े ज वस्तुओं प्रतिनिश्चित एक एक रूप हो, सविश्वरूप सत्ता ने एक रूप बने छे, अर्थात सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होवा थी सविश्वरूप छे तेज अहीं कहेली अवांतर सत्ता रूपन होवा थी एक रूपन छे। मुझे तो लगता है
गुरुदेव के
स्वामी जी जो बताएंगे जब आप उन समझेंगे,
यानी ऐसा लगता है कि महासत्ता है वो सभी पदार्थों में स्थित है, तो जो विश्व की सभी वस्तु उसमें आ गए तो विश्व रूप है, परंतु प्रत्येक अवांतर सत्ता की अपेक्षा से प्रत्येक का अपना अपना जुदा जुदा रूप है, इसलिए वहाँ उसको सविश्व रूप नहीं कहते, एक रूप पण कह दिया। सविश्व ने अनेक पणु छे और यहाँ एक पना अवांतर सत्ता एक पने छे,
प्रत्येक पर्याय में रहेली व्यक्तिगत भिन्न भिन्न सत्ता वड़े ज प्रतिनिश्चित एक एक पर्याय नु अनंतपणु थाय छे, तेथी अनंत पर्याय में सत्ता छे, सत्ता ने एक पर्याय में पणु छे, अर्थात एक सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होवा थी अनंत पर्याय में छे, तेज अहीं कहेली अवांतर सत्ता रूप पण होवा थी एक पर्यायमय पण छे। आ रीते बधुं निर्वज्य अर्थात थोड़ू ऊपर कहेलू सर्वस्वरूप निर्दोष छे निर्बाध छे किंचित विरोध वाळू नथी, कारण के तेनु सत्तानु स्वरूपनु कथन सामान्याने विशेषना प्ररूपन प्रत्ये ढळता बे नयोने आधीन छे।
हम द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक कहते हैं ना, एक अनेक वगैरह वगैरह, वैसे यहाँ हाँ अभी स्वामी जी इसको समझाएंगे ज्यादा।
प्रवचन। सत्ता अस्तित्व स्वरूप छे, यानी उसकी विद्यमानता है। पदार्थों अस्तित्व तेनु नाम सत्ता छे, अने सत्ता एक छे, एटले के महासत्ता तरीके बधा पदार्थों अस्तित्व छे, बधा थईने एक ज पदार्थ छे एवो तेनो अर्थ नथी। क्या कहा समझ में आया कि सब पदार्थ है लेकिन सब पदार्थ मिलकर एक है, ऐसा नहीं है कि बधा पदार्थों नो अस्तित्व छे, बधा थईने एक ज पदार्थ छे एवो एनो अर्थ नथी एम कहे छे। महासत्ता एटले बधुई छे, अहो आमा वितरागता छे, बधु छे, निगोद पण छे ने सिद्ध पण छे, चेतन पण छे ने जड पण छे, एमा एकला ज्ञाता रही गयो, एकलो ज्ञाता रही गयो, छे पणामाथी काढे काढे कोने काढी नाखीश, बधुई छे एमा जाणवामां वितराग भाव आवे छे। यानी ये बता रहे है कि भाई सबकी सत्ता है तो तुझे क्या करना है, तो अपने स्वरूप में देखने, बाकी कहाँ देखने की गरज ही नहीं है, क्योंकि सब है उसका कभी नाश नहीं होता, और प्रत्येक द्रव्य अपना अपना पन्नमन करने में सक्षम है, तो तुझे सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहना है, एम जानवा में वितराग भाव आवे छे। महासत्ता एक छे ने ते समस्त पदार्थों में रहेली छे, एटले के अस्तित्व तो बधा पदार्थों में छे। महासत्ता एक होवा छता अनेक प्रकारना स्वरूप थी संयुक्त छे। अस्तित्व पने बधा सत होवा छता तेमा कोई चेतन, कोई जड़, कोई सिद्ध, कोई निगोद, एम अनेक प्रकार छे। वळी सत्ता में अनंत परिणामों छे। सत्ता उत्पाद वे ध्रुव स्वरूप छे, અને સત્તા પ્રતિપક્ષ સહિત છે, એટલે કે મહાસત્તા તરીકે મહાસત્તા સત છે, પણ તેના પેટાભેદ તરીકે મહાસત્તા નથી, કેમ કે મહાસત્તામાં ભેદ પડતા નથી, મહાસત્તા પ્રતિપક્ષ સહિત છે તે આ પ્રમાણે। અને મહાસત્તા મેં કોઈ ભેદ હિ નહીં હોંગે, વો અભેદ એક હિ હૈ। महासत्ता एक छे, अवांतर सत्ता अनेक छे। महासत्ता समस्त पदार्थों में व्यापक छे, अवांतर सत्ता एक पदार्थ में व्यापक छे। अभी जैसे 10 व्यक्ति बैठे हैं तो उनका एक महासत्ता है, मनुष्य एज महासत्ता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की इंडिविजुअलिटी है, तो यहाँ पर हाँ वो अवान्तर सत्ता हो गए। अब यहाँ बता रहे ना महासत्ता एक छे, यानी ऊपर क्या बताया, महासत्ता एक है यानी सर्व मिलकर एक है, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग अस्तित्व है अपना, तो महासत्ता एक छे, अवान्तर सत्ता अनेक छे। 10 आदमी बैठे तो सरक के सत्ता अलग अलग है, उसको अवान्तर सत्ता कहा। तो महासत्ता समस्त पदार्थों में व्यापक छे, एटले 10 आदमी में व्यापक छे, अवांतर सत्ता एक पदार्थ में व्यापक छे। महासत्ता अनेक स्वरूप वाली छे, अने अवांतर सत्ता एक स्वरूप वाली छे। द्रव्यनी महासत्ता में,
देखो द्रव्यनी महासत्ता बताएं।
हाँ, द्रव्यनी महासत्ता में उत्पाद वय ध्रुव त्रणे समाय जाय छे, ने अवांतर सत्ता में उत्पाद ते उत्पाद छे, व्यय ते व्यय छे, ने ध्रुव ते ध्रुव छे। ये पॉइंट अलग है। इसलिए मैंने कहा कि अपना इमेजिनेशन से भी गुरुदेव जो बताएंगे वो उसको पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्या कहा, द्रव्य नी महासत्ता मां तो एमां उत्पाद वे ध्रुव त्रणे समाई जाए छे, અને અવાંતર સત્તામાં ઉત્પાદ તે ઉત્પાદ છે, વ્યય તે વ્યય છે, અને ધ્રુવ તે ધ્રુવ છે, लोकालोक ने महासत्ता कहो त्यारे एक एक द्रव्य ते अवांतर सत्ता छे। एक द्रव्य ने महासत्ता कहो त्यारे तेना पेटा बाद ते अवांतर सत्ता छे। एक द्रव्य ने महासत्ता कहो त्यारे तेना पेटा बाद ते अवांतर सत्ता छे, यानी उत्पाद वे ध्रुव वो अवांतर सत्ता छे, ऐसा हो गया ना। बधा पदार्थों वच्चे महासत्ता नो जुदो दोरो पेरावेलो छे, पेरोवेलो छे, अथवा तो बधा पदार्थों एक अधिष्ठान छे एवो महासत्ता नो अर्थ नथी। महासत्ता नो अर्थ तो एटलो छे के बधा पदार्थों मा अस्तित्व छे, अस्तित्व माथी कोई पदार्थ बाहर निकली जतो नथी। बधा पदार्थों ना अस्तित्व ने एक साथे केवू तेनू नाम महासत्ता छे। पहला बधुई छे एम स्थापीने पछी तेमा भेद पड़े कि आ जीव आ जीव वगैरे। सत्ता सहित पदार्थ तेज वस्तु छे। पदार्थनु जे अस्तित्व छे तेज सत्ता छे, ने सत्ता सहित छे तेज वस्तु छे। सत्ता वगरनी वस्तु न होई शके। सत्ता वाली वस्तु केवी छे? नित्य अनित्य स्वरूप छे। वस्तु कायम टके छे ने क्षणे क्षणे अनित्य ने पण अनित्यपणे पलटे पण छे। जो वस्तु ने सर्वथा नित्य ज मानो तो सत्ता नो नाश थई जाय, કેમ કે સર્વતા નિત્ય વસ્તુમાં ક્ષણવર્તી પર્યાયના અભાવથી પરિણામનો અભાવ થઈ જશે, ને પરિણામનો અભાવ થતાં વસ્તુના અસ્તિત્વનો જ અભાવ થશે। વસ્તુના કાર્યથી તો વસ્તુનું અસ્તિત્વ નક્કી થાય છે, જો વસ્તુમાં કાર્ય જ ન હોય તો નિત્ય વસ્તુ પણ રહી જ ન શકે। પરિણામના પલટા વિના વસ્તુ જ નક્કી ક્યાંથી થાય?
ઇસકા અર્થ સમજમાં આ રહે? વસ્તુના કાર્યથી તો વસ્તુનું અસ્તિત્વ નક્કી થાય છે, કાર્યને પર્યાય। તો આપ એક ક્લિપ દેખાઈ દી, ક્યાં દેખા દેખા આપને કલર દેખા, યે પિંક કલર દેખા, વર્ણ દેખા કે ઉસકે પિંક પર્યાય દેખે, વર્ણ કિસી ના કિસી અવસ્થા મેં હૈ ના। यहाँ क्या लिखते हैं? वस्तु ना कार्य थी वस्तु ना अस्तित्व नक्की थाई छे। वर्ण है पिंक है, यानी काला है पीला है नीला है, ये तो वर्ण की अवस्थाएं हैं, उसके द्वारा हम वर्ण को नक्की कर रहे हैं, और वर्ण है तो वो पुद्गल है ये नक्की कर रहे हैं। तो ये कहते हैं वस्तु के कार्य से वस्तु का अस्तित्व नक्की हो रहा है। हम अपना अस्तित्व भी हमारे कार्य से होगा, क्योंकि जहाँ जानना 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 चल रहा है वो मैं वस्तु, यानी हमें तो व्यक्त ही है ना, कार्य व्यक्त होता है। व्यक्त तो स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो अव्यक्त है। जो व्यक्त है तो वो पर्याय व्यक्त रूप से होती है, और उसके द्वारा ही वस्तु का निर्णय होने वाला है। ये कहते वस्तु ना कार्य थी वस्तु नो अस्तित्व नक्की थाई छे, और कार्य नहीं होगा तो नित्य वस्तु पर नहीं रहेगी। मैंने पहले एक बार वो उदाहरण दिया था ना, जैसे बीज है वो तो गुठली आम की, तो उसमें कौन सा सामर्थ्य है पूरे आम का वृक्ष होने की? तो बीज का डिसेक्शन कर दो, बताओ कहाँ है वो सामर्थ्य। व्यक्त क्या है? उसकी गुठली पी, गुठली नाम के पर्याय बीज। अब उसी का छोटा अंकुर होकर थोड़ा पौधा हो गया, अभी व्यक्त क्या है? वो पौधेपना उसका व्यक्त है, वो उसकी अवस्था है, उसमें सामर्थ्य कितनी है? पूरे आम होकर वो आम उसमें आ जाएगी, वो सब पूरा सामर्थ्य है, वो दिखाई नहीं दे, वो व्यक्त है, वो वही दिखता है।
पर्याय, हाँ, अवक्तव्य नहीं कह नहीं सकते।
अवक्तव्य बात अलग, वो एक साथ दोनों बातें कह ही सकते हैं, अस्ति नास्ति उसको अवक्तव्य।
जैसा भाई किसी को दो बेटे हैं तो भाई एक साथ नाम नहीं बता सकते, वो अवक्तव्य है, कैनॉट बी एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन, कैनॉट बी सेड,
कथन
नहीं हो सकता है, इसलिए उसको अवक्तव्य कहेंगे। और व्यक्ति यानी प्रकट होना, यहाँ जो है ना
शक्ति और व्यक्ति, अव्यक्त, व्यक्त अलग बात है, अव्यक्त अलग बात है, और अवक्तव्य बात अलग है। वक्तव्य ने बोलना, अवक्तव्य ने कह नहीं सकते, और अव्यक्त ने प्रकट नहीं है।
फिर से लास्ट पैराग्राफ के नीचे से दूसरी लाइन, वस्तुना कार्यती तो वस्तुनो अस्तित्व नक्की थाय छे, जो वस्तुमा कार्य ज न होय तो नित्य वस्तु पण रही ज न सके, परिणाम ना पलटा विना वस्तु ज नक्की क्याती थाय। वर्तमान परिणामना अस्तित्व अगर द्रव्य, द्रव्य नु आखू भिन्न अस्तित्व नक्की थई शकशे नहीं। अवस्था वगर आ चीज बीजा पदार्थों थी भिन्न परिणामे रही छे एम पदार्थ नु अस्तित्व कई रीते जणाशे, वस्तु ने सिद्ध करनार तो पर्याय छे। यहाँ बार बार यही बताते कि हमने न द्रव्य को देखा है न गुण को देखा है, लेकिन उनकी पर्याय को देखा है। तो क्या कहते, वस्तु ने सिद्ध करनार तो पर्याय छे, आ पर्याय छे त्या वस्तु नु परिणाम छे, परिणाम एटले परिणमन, એમ પર્યાયથી વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે, પર્યાયનું કારણ દ્રવ્ય છે એ વાત જુદી છે, પણ દ્રવ્યને નક્કી કરવું હોય તો તે પર્યાય ઉપરથી નક્કી થાય છે, પર્યાય વિના કાયમી વસ્તુ સિદ્ધ નહીં થઈ શકે। પર્યાય વ્યક્ત છે, પ્રકટ છે, કાર્ય છે, ને દ્રવ્ય તો અવ્યક્ત, અપ્રકટ, કારણરૂપ છે, ते व्यक्त पर्याय ऊपर थी अव्यक्त द्रव्य ने सिद्धि थाई छे।
बहुत महत्व की बात है, और ये तो पर्याय तो हम निकाल बाहर करना चाहते कहीं तो। अरे द्रव्य उस रूप अभी परिणमा है, जितनी शक्ति है उस रूप अभी, जितना उसका प्रकट है वो व्यक्त अवस्था है, उस रूप अभी उसका परिणमन है, उसके पीछे तो पूरा द्रव्य पड़ा है ना, उसका पूरा सामर्थ्य पड़ा है।
यहाँ बता रहे ना, व्यक्त पर्याय ऊपर थी अव्यक्त द्रव्य ने सिद्धि थाय छे, यानी द्रव्य को हम देखते ही नहीं, देख नहीं सकते, पुद्गल जो रूपी है फिर भी उसको हम पर्याय के माध्यम से नक्की कर सकते हैं कि ये पुद्गल है। एक परमाणु तो इतना सूक्ष्म दिखे ही नहीं, लेकिन जो स्कंद है वो स्कंद भी, जो परमाणु जो स्कंद है पर उसके परमाणु नहीं दिखते, उसकी पर्याय दिखते है, अवस्था दिखती है, और उस पर से तो ये तो जो स्वयं मूर्तिक द्रव्य है उसको भी हम नहीं देख सकते हैं, द्रव्य को, तो अमूर्तिक कहाँ देखेंगे, लेकिन उनकी पर्याय से नक्की होता है कि ये द्रव्य यहाँ होना चाहिए। जैसे अभी आपको बताया ना कि भाई ये क्लिप है तो ये कौन से रंग की है, तो भाई हरे रंग की है, तो हरा ये पर्याय है, वर्णगुण भी नहीं दिखता अपने को, पर्याय दिखती है, और वर्णगुण भी नहीं दिखता है और द्रव्य भी नहीं दिखता है, उसकी पर्याय ही दिखती है। आ अर्थ समय नु स्वरूप कहेवामां आवे छे, आवा अर्थ समय ने जाणी ले तेवू जीवना ज्ञान नु सामर्थ्य छे, ज्ञान समय नु सामर्थ्य छे। पदार्थ जो परिणम तो न हो तो आ पदार्थ छे एम कई रीते नक्की करशो, नित्य पदार्थ मा जो क्षणे क्षणे परिणमन न थतो हो तो वर्तमान सत्ता न रहे, एटले वर्तमान सत्ता विना त्रिकाळी सत्तानो पण अभाव थई जाय छे। वस्तु तो वर्तमान वर्तमानपणे रहीने त्रिकाळ छे, जो वर्तमान ने न माने तो नित्यपणू नक्की ज न थाय। वस्तुनु वर्तमान वर्तमानपणू मान्या विना आ तत्व नित्य छे एम नक्की थई शके ज नहीं। सर्वथा कूटस्थ माने तेने वस्तुना अस्तित्व ने जाणू ज नहीं। अभी ये जो बात बता रहे हैं ना, ये वेदांती जो है वो क्या है कि द्रव्य को कूटस्थ नहीं मानते, पर्याय मानते ही नहीं, आम सत बाकी सब झूठा है, उसके साथ अपने जैन दर्शन की तुलना नहीं हो सकती। ख्याल में है ना? क्योंकि यहाँ क्या बता रहे हैं कि वर्तमान उसकी अवस्था बिना, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य भूतकाल में, एक 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 समय में उसका अस्तित्व 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 है, वर्तमान में भी अस्तित्व है और भविष्य काल में भी अस्तित्व रहेगा। तो वो पर्याय के माध्यम से द्रव्य का अस्तित्व नक्की करते हैं। अगर हम पर्याय को नहीं मानेंगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो यहाँ क्या कहते हैं इन लास्ट सेकंड लाइन, आ तत्व नित्य छे एम नक्की थई शके ज नहीं। सर्वथा कूटस्थ माने तेना वस्तुना अस्तित्व ने जाणू ज नथी। अभी ये जो जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मता है, वो अभ्यास के बिना नहीं आएगी। और फिर मिसलीडिंग जो कि होता है। दृष्टांत, अब यहाँ दृष्टांत देके समझा रहे स्वामी जी। जेम माटी पदार्थमां घड़ो पिंड वगैरह काई पण पर्याय जो न हो तो माटी नो अस्तित्व साबित न थाय। माटी छे पण वर्तमान कोई अवस्था नथी तो माटी छे एम कोना आश्रय कहेवाशे?
मनीषाबेन, एक बार मैंने आपको पूछा था, आपके घर में सोना है तो अवस्था बिना का है क्या? क्या
बताया ना उन्होंने?
अवस्था है ना, कोई ना कोई अवस्था है। हाँ, यानी आपने उस समय बताया था, नहीं नहीं वो तो पिंडलो छे के काई छे, तो वो भी उसकी अवस्था है। अवस्था बिना का कोई द्रव्य होता ही नहीं है। सोना ये द्रव्य नहीं, वो तो हम उदाहरण दे रहे हैं, यह तो माटी का उदाहरण दिया। माटी है पर किसी फॉर्म ही नहीं उसका, तो ऐसा नहीं हो सकता।
थर्ड लाइन, पदार्थ पोते पोतानी पर्याय पने परिणमनार छे, एवं पदार्थ नु स्वरूप छे, एटले कोई बीजो तेने पर्याय ने करे एम नथी। इस पर से ये भी बात नक्की करते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उस द्रव्य में ही होता है, दूसरा कोई नहीं करते। वस्तु छे एम कहे पन वर्तमान वर्तती तेनी कोई हालत जो न माने तो तेने वस्तु नु अस्तित्व जाणू नथी। वस्तुत्व तो जेवा स्वरूपे छे तेवा स्वरूपे ज रहे छे, पन ऊंधू माननार ने पोताना ज्ञान समय में भूल थाय छे, एटले के मिथ्या ज्ञान थाय छे। पदार्थ समय नु स्वरूप तो जेम छे तेम ज छे। मारी पर्याय बीजा ने लीधे थई छे थई एम माने तो तेने पण त्रिकाळी द्रव्य नी सत्ता ने मानी नथी। माटे वस्तु एकांत नित्य नथी, परंतु क्षणे क्षणे पलटे पण छे एम सिद्ध कर्युं। हवे बीजा कोई बौद्ध वगैरे वस्तु ने सर्वथा क्षणिक ज माने छे, तेनी सामे वस्तु नु नित्य सिद्ध करे छे। काले जे मानस ने जोयो हतो તે માણસ આ છે,
તે જ માણસ આ છે
એવું જ્ઞાન થાય છે, તે સામી વસ્તુનું નિત્યપણું સિદ્ધ કરે છે। અને ઇસ વ્યક્તિ કો કલ દેખા થા વહી વ્યક્તિ આજ દિખ રહી હૈ, તો વો વ્યક્તિ કા નિત્યપણા નક્કી હો ગયા। યે જો બૌદ્ધ ધર્મીય હૈ વો ક્ષણિક માનતે હૈ સબ। जो वस्तुमां नित्यता न होय तो जेने काले पैसा आप्या हता तेज मानस आजे पाछा आपे छे एवुं ज्ञान न थई शके। वस्तुने सर्वथा क्षणिक मानता नित्यताने जाणनारुं ज्ञान पण मिथ्या ठरशे। माटे जेने काले जोयो हतो तेज आ छे एवा ज्ञानना निमित्तरूप वस्तुमां ध्रुवपणुं सिद्ध थाय छे। जेम बाळक मटीने युवान थयो पण त्यां पुरुष तो तेनो तेज रह्यो, पर्याय बदली पण पुरुष तेज रह्यो एटले के बाळक युवान वगैरे पर्यायमां पुरुषनी नित्यता रही એટલે પુરુષ એટલે દેટ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ તેમાં નિગોધથી સિદ્ધ સુધીની બધી પર્યાયમાં આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે ને પર્યાયપણે પલટે છે. નિત્ય અનિત્ય વસ્તુ ઉત્પાદવે ધ્રુવ સ્વરૂપ છે. ગુણનું નિત્યપણું રહે છે તે અપેક્ષાએ ધ્રુવતા છે. તે પર્યાયના અનિત્યપણાની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ વ્યય છે. દરેક પદાર્થનું અસ્તિત્વ આવું ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ સ્વરૂપ છે. નિત્ય અનિત્યપણું માન્યા વિના ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ સિદ્ધ ન થઈ શકે. વસ્તુનો આવો ધર્મ છે એટલે વસ્તુની પર્યાય વસ્તુથી પોતાથી થાય છે. કોઈ કોઈને પલટાવે એમ નથી. સત્તા તરીકે વસ્તુ એક છે એમ કહ્યું, પછી નિત્ય અનિત્ય તરીકે બે ધર્મ કયા અને પછી ઉત્પાદ વે ધ્રુવ એવા ત્રણ પ્રકાર કયા? પોતાની સત્તા નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ છે, નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ અને ઉત્પાદ વે ધ્રુવાત્મક છે એમ પોતાની સત્તાને સ્વતંત્ર ન જોતા અજ્ઞાની સંયોગને જુએ છે કે આનાથી આમ થયું, પણ સંયોગી ચીજના ઉત્પાદ વે ધ્રુવ તેનામાં છે ને પોતામાં પોતાના ઉત્પાદ વે ધ્રુવ પોતામાં છે. જો કે સત્તામાં નિત્ય અને અનિત્ય એવા બે ભેદ છે તો પણ સામાન્ય સત્તાની અપેક્ષાએ તો એકતા છે જે નિત્ય અનિત્ય સ્વરૂપ છે ને ઉત્પાદ વે ધ્રુવાત્મક છે તે જ સત્તા છે. સમસ્ત પદાર્થોનું સામાન્ય કથન કરતા સત્તા એક છે, સમસ્ત પદાર્થોમાં રહેલી છે. કેમ કે પદાર્થ છે એવું જે કથન છે અને પદાર્થ છે એવું જે જ્ઞાન છે તે પદાર્થની સત્તા વિના બની ન શકે. જો સત્તા ન હોય તો પદાર્થનો જ અભાવ થાય. જે કંઈ વિસ્તાર છે તે બધો સત્તામાં ગર્ભિત છે. કેમ કે પહેલાં સત્તા છે એમ નક્કી કરીને પછી જ તેનો વિસ્તાર થઈ શકે. પદાર્થ જ ન હોય તો વિસ્તાર કોનો? ઉત્પાદ વે ધ્રુવ એ ત્રણેય સત્તાના અંશો છે. સત્તા ઉત્પાદ વે ધ્રુવવાળી છે. અનંત પર્યાયના જેટલા ભેદ છે તે બધા ઉત્પાદ વે ધ્રુવથી જાણી શકાય છે. હવે અહીં રૂકતે હૈ. જાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લોકાલો સૂ